ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلام کے پانچ ارکان میں سے کلمہ طیبہ کے بعد جو دوسرا رکن ہے وہ نماز ہے۔ اسلام کے پانچ ارکان شہادتین، ان میں پہلا رکن ہے، یعنی کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا، اس بات کی گواہی دے دینا کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا رکن ہے وہ ہے نماز، اسی طرح نماز کے بعد روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ پانچ ارکان ہیں جن کے بارے میں حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی جو فاؤنڈیشن ہے، اسلام کی جو بنیاد ہے، وہ پانچ چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے جو دوسرا اہم رکن ہے وہ ہے نماز۔ نماز کی اہمیت کا جو اندازہ ہے آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کم و بیش 700 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے، جہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت ساری فضیلتیں ہیں قرآن اور حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور بہت ساری بشارتیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ وہیں پر نماز کو چھوڑنے والے، نماز پڑھنے میں سستی برتنے والے، اس سے روگردانی کرنے والوں کے لیے سزائیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ آئیے قرآن و حدیث سے تخریج شدہ چند ایک سزاؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ المدثر پارہ 29 میں ارشاد فرماتا ہے، ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ قالوا وہ بولے، لم نك من المصلين، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، یعنی ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے۔ یہاں پر دو وجہ بیان فرمائی گئیں، ایک تو نماز کا نہ پڑھنا اور دوسرا मिस्कीन को खाना ना खिलाना, इन दोनों वजूहात में से जो पहली वजह है वो नमाज का ना पढ़ना है। जहन्नुम में जाने का सबब क्या बना? नमाज ना पढ़ना। जहन्नुम में जाने का सबब क्या बना? या मिस्कीन को खाना ना खिलाना। तो यहां पर कुरान मजीद फुरकान हमीद की आया मुबारका में बिल्कुल वाज़ह है कि उनसे जब सवाल किया जाएगा कि जहन्नुम में जो तुम पहुंचे हो इसका सबब क्या है, तो वो बयान करेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। और दूसरी हदीस मुबारक, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जानबूझकर एक नमाज को तर्क कर देता है, छोड़ देता है, फरमाया कि उसका जो नाम है जहन्नुम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिसके जरिए से जहन्नुम में वो दाखिल होगा। ये भी एक बहुत बड़ी सजा है, यानी उसका जहन्नुम में जाना गोया के तय हो जाता है कि ये शख्स जहन्नुम में जाएगा, क्योंकि ये नमाज को जानबूझकर तर्क करने वाला है। मनकूल है कि बरोज़ कयामत वो शख्स यानी नमाज के मामले में सुस्ती करने वाला इस हालत में आएगा कि उसके चेहरे के ऊपर तीन सतरें, तीन लाइनें लिखी हुई होंगी। उनमें से एक जो सतर होगी, जो एक जुमला है, वो इस तरह होगा कि ए अल्लाह का हक बर्बाद करने वाले, यानी उसे कहा जाएगा कि तू हकुकुल्लाह को बर्बाद करने वाला था। और दूसरी सतर उसके ऊपर लिखा होगा, ए अल्लाह के गजब के साथ मखसूस, यानी तुझ पर अल्लाह की नाराजगी है। और तीसरी बात यह लिखी हुई होगी कि जिस तरह दुनिया में तूने हकुल्ला यानी अल्लाह तबारक व ताला का जो हक है उसे जाया किया, इसी तरह आज तू भी अल्लाह की रहमत से मायूस हो जा। ये तीन सतरे हैं जो उसके चेहरे के ऊपर लिखी हुई होंगी जब बरोज़ कयामत ये शख्स आएगा। और किताबुल कबायर के अंदर ये बात मनकूल है, जहन्नुम में एक वादी है, उसका नाम है वैल। अगर इसमें दुनिया के पहाड़ डाले जाएं तो वो भी इसकी गर्मी से पिघल जाएंगे। उस वादी के अंदर दुनिया के पहाड़ डाल दिए जाएं तो वो पिघल जाएंगे। ये उन लोगों का ठिकाना है, यानी वो वादी जो है ये उन लोगों का ठिकाना है जो नमाज में सुस्ती करते हैं और वक्त निकाल कर फिर उसकी कजा करते हैं, मगर ये कि वो अपनी कोताही यानी खता पर नादिम हो जाएं। अल्लाहु अकबर, यानी ईमान वाला अगर सुधर जाता है और अपनी इस गलती पर, अपनी इस खता के ऊपर वो नादिम हो जाता है, तो फरमाया अगर वो अपनी इस कोताही के ऊपर नादिम हो जाए और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह हमें सच्ची पक्की तौबा कर ले तो रब्बे कायनात उसे महफूज फरमाएगा। और एक पांचवी बात, अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत सैयदना दाऊद अला नबीना व अली सलातु व सलाम की तरफ वही फरमाई और इरशाद फरमाया कि ए दाऊद, बनी इसराइल से कहो, क्योंकि आप भी हजरत दाऊद अला नबीना व अली सलातु व सलाम बनी इसराइल की तरफ नबी बनकर आए, तो इनसे वही फरमाई अल्लाह तबारक व ताला ने कि ए दाऊद, बनी इसराइल से कह दे, जिसने एक भी नमाज छोड़ी वो मुझसे कयामत के दिन इस हाल में मिलेगा कि मैं उस पर गजब फरमाऊंगा। यानी अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे से नाराज हो जाता है जो जानबूझकर नमाज को तर्क करता है, जो नमाज में सुस्ती करता है, नमाज को छोड़ देता है, गफलत का मुजाहरा करता है, सुस्ती बरतने लगता है और नमाज का वक्त जाया कर देता है, यहां तक के कजा हो जाती है और फिर उसके बाद अगरचे पढ़ लेता है, तो फरमाया इस पर अल्लाह का गजब होगा। तो मेरे चैनल के नाज़रीन, हम सब को अल्लाह तबारक व ताला की रजा को हासिल करना है, ना कि गजब को। हमें उसके गजब से बचना है, पनाह मांगनी है कि अल्लाह करीम हमें अपनी रजा की दौलत नसीब फरमाए और इस दुनिया में ही हमसे राजी हो जाए। और दुनिया में जब वो राजी हो जाएगा तो कयामत के दिन भी वो इनाम फरमाएगा। और उस बंदे के लिए फिर जो बशारतें कुरान और हदीस में है, जो नमाज पढ़ने वाले हैं, नमाज का फर्ज अदा करने वाले हैं, अल्लाह को राजी करने वाले हैं और अल्लाह के अहकाम पर अमल करने वाले हैं, उन बशारतों से फिर इसे नवाजा जाएगा। अल्लाह करीम हम सब को इन चंद बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आज के इस सिलसिले में हम चंद एक अहकाम नमाज को शामिल करते हैं। गुज़िश्ता सिलसिले में जुमातुल मुबारक के हवाले से मसाइल पर गुफ्तगू चल रही थी, जिनमें आखिरी जो मसला था उस पर हम ये बात कर रहे थे कि जब जुमातुल मुबारक की नमाज के लिए पहली आजान हो जाए तो फिर कामकाज, खरीदो फरोख्त, हर चीज बंद कर लेनी चाहिए और सई इलल जुमा, जो कि एक मुसलमान पर जिसके ऊपर जुमा फर्ज है उसके ऊपर वाजिब है, उसे चाहिए कि नमाज जुमा की तैयारी करें। क्योंकि पहली अजान के बाद खरीद व फरोख्त करना यह जायज नहीं है। आज के सिलसिले में इसी से मुतालिका एक सवाल शामिल करते हैं कि अजान जब पहली हो जाए तो फिर सई इलल जुमा वाजिब हो जाता है, यानी खरीदारी करना इसे मना कर दिया गया है, तो क्या वो शख्स के जो नमाज जुमा पढ़ चुका है, यानी एक मस्जिद में नमाज जुमा का वक्त इब्तदाई औकात में से था तो इसने नमाज अदा कर ली, तो क्या ये शख्स ऐसे बंदे से खरीदारी कर सकता है जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी, दुकान लगा के बैठा हुआ है और अभी नमाज जुमा के लिए नहीं गया, तो क्या वो शख्स के जो नमाज जुमा पढ़ चुका है वो इस बंदे से खरीदो फरोख्त कर सकता है, या किसी चीज की से जरूरत है तो उसकी दुकान से खरीद कर अपने घर ले जा सकता है? इस हवाले से उलमा ये फरमाते हैं कि चूंकि इस दुकानदार का माल बेचना जायज नहीं है, अजाने अव्वल हो चुकी थी, अभी भी दुकान पे बैठा हुआ है, जबकि इसके लिए माल बेचना जायज नहीं, इस पर जुमातुल मुबारक की नमाज के लिए सई करना वो वाजिब है, इसने वाजिब को तर्क कर दिया, दुकान पे बैठा है, इसका बेचना जायज नहीं, इस पर वाजिब है कि जुमा की सई करे, लिहाजा इस बंदे से खरीदारी करना गोया के गुनाह के काम के अंदर मदद करना कहलाएगा और ऐसा करना जायज नहीं है। गुनाह के काम में मदद नहीं करना चाहिए, नेकी के काम में मदद करने का हमें हुक्म दिया। वला ताअमनु अलल इस्म वल उदवान, सरकशी और गुनाह के जो काम है इनमें हमें एक दूसरे के साथ ताउन करने से मना कर दिया गया है। तो लिहाजा वो शख्स के जिसने अभी नमाज जुमा अदा नहीं की और दुकान पे बैठा हुआ है, इससे वो शख्स के जो नमाज जुमा अदा कर चुका है वो बंदा भी खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता। और दूसरा सवाल आज के सिलसिले में हम शामिल करते हैं, जुमा की पहली अजान के बाद खरीद फरोख्त चुके मना है, तो अजान के दरमियान में जबकि अजान अभी जारी है, चंद एक कलिमात अभी कहे गए हैं, तो क्या इस दौरान खरीदारी कर ली जाए तो गुनाह तो नहीं? उलमा ने लिखा इस हवाले से कि जिन अफराद पर जुमा लाजिम है उनका जुमातुल मुबारक की नमाज के लिए जो पहली अजान दी जा रही है इस दौरान भी खरीदो फरोख्त करना जायज नहीं है, ये गुनाह का काम है। तो खास दौरान अजान हो या अजान के बाद हो, इन लोगों से खरीदो फरोख्त करना ये जायज नहीं है। जुमा की अजान के बाद खरीदो फरोख्त जायज नहीं होती, लेकिन अगर किसी ने जुमा पढ़ने के लिए जाना है और मस्जिद दूर है, अब मस्जिद में पहुंचने के लिए इसे कोई सवारी बुक करवानी पड़ेगी, मिसाल के तौर पे कार बुक करवाता है, रिक्शा बुक करवाता है, मोटरसाइकिल बुक करवाता है कि उसके जरिए से मैं उस मस्जिद तक पहुंच जाऊं। तो इस बंदे का ये जो फेल है, ये फेल करना कैसा है? आया कि ये जो इसने किराए का एग्रीमेंट किया है, ये भी इसके लिए नाजायज हो जाएगा। इस हवाले से ये बात जहन में रखिए कि इस बंदे पर सई इलल जुमा वाजिब है और ये सई इलल जुमा के खिलाफ नहीं है। इसलिए फुकहा ने लिखा कि जो शख्स जामे मस्जिद पहुंचने के लिए ताकि वहां जाकर ये नमाज जुमा पढ़े, उसके लिए ये सवारी बुक करवाता है और किराया देता है, उसके साथ तय करता है या एग्रीमेंट कर लेता है, उसका ये एग्रीमेंट करना ये नाजायज नहीं है। क्योंकि इसका ये काम करना, ये फेल करना, ये सही इलल जुमा के मवाफिक है, ना कि उसके खिलाफ। मजीद एक सवाल आज के सिलसिले में शामिल करते हैं। सवाल ये है, क्या बीमारी के सबब से जुम्मा की नमाज की फर्जियत बंदे के ऊपर से साकित हो जाती है कि बंदा एक बीमार है, उस बीमारी की वजह से क्या फर्जियत खत्म हो गई? अगर फर्जियत खत्म हो गई है, यानी अब उस बीमारी की वजह से यह मस्जिद को ना जाए, तो क्या घर में ही नमाज जुमा कायम कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो क्या घर में ही ये जोहर की नमाज पढ़ सकता है और जोहर की नमाज पढ़ने के लिए जमात कायम की जा सकती है? अगर नहीं की जा सकती तो क्या जोहर की नमाज मस्जिद में अभी नमाज जुमा की इमामत नहीं की गई, अभी नमाज नहीं पढ़ी गई, तो नमाज पढ़ने से पहले पहले क्या ये घर में ही अपनी जोहर की नमाज पढ़ सकता है या नहीं? इन चंद सवालात के जो जवाबात है, उसके लिए सबसे पहले ये बात जहन में रखिए कि कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से फर्जियत जुमा बंदे के ऊपर से साकित हो जाता है। याद रखिए, मुतलकन किसी भी बीमारी का आ जाना, हल्का सा बुखार आ गया, सर दर्द आ गया, टांग में कुछ हल्की सी दर्द आ गई, बाजू में दर्द आ गई, जिस्म में दर्दें लग गई या पेट में कुछ दर्द महसूस होने लग गई, तो मुतलकन बीमारी के सबब से नमाज जुमा की फर्जियत साकित नहीं होती, बल्कि बीमारी के सबब से जुमा की फर्जियत साकित होने या ना होने में तफसील है। आइए वो तफसील जहन में रखिए। अगर तो बीमारी ऐसी हो कि मरीज उस बीमारी के सबब से खुद चलकर जामिया मस्जिद तक नहीं जा सकता, पहुंच ही नहीं सकता, खां वो गाड़ी में ही जाए लेकिन जामिया मस्जिद वो नहीं जा सकता उस बीमारी की वजह से, और बाद उलामा ने मजीद वजाहत करते हुए ये भी कहा कि उसके पास कोई ऐसा शख्स भी मौजूद ना हो जो उसे उठाकर या व्हील चेयर पर या गाड़ी में बैठा कर वो नमाज जुमा के लिए जामे मस्जिद तक ले जा सकता हो, या खुद तो जा सकता है, इसी तरह कोई बंदा भी मौजूद है जो इसे ले जाएगा, उठाकर गाड़ी में बिठा कर या व्हील चेयर के ऊपर इसे खुद जामे मस्जिद पहुंचा आएगा। लेकिन बात यह है कि इसके खुद जाने या किसी के ले जाने पर बीमारी के बढ़ जाने का सही अंदेशा मौजूद है या उस बीमारी के देर से दुरुस्त होने का सही अंदेशा मौजूद है, यानी यह खतरा है कि अगर ये खुद जाएगा या कोई भी इसको ले जाएगा तब भी वो बीमारी देर से दुरुस्त होगी या बीमारी बढ़ जाएगी, तो फिर उलामा ने लिखा है कि ऐसे मरीज के लिए फर्जियत जुमा जो है वो साकित हो जाती है, यानी जुमा फर्ज नहीं रहता और ये बंदा जोहर की नमाज अदा कर सकता है। अब इसके ऊपर लाजिम है, चूंकि नमाज तो माफ नहीं है, तो इसके ऊपर लाजिम है कि ये जुम्मा की जगह पर यह जोहर की नमाज अदा करे। और अगर बीमारी इस हद तक नहीं पहुंची हुई तो फिर ऐसी सूरत के अंदर इसके ऊपर से फर्जियत जुमा साकित नहीं होती, इसे जुम्मे के लिए जाना ही पड़ेगा। और जब यह तय हो गया कि इस बंदे पर फर्जियत जुमा साकित है, तो इस सूरत के अंदर क्या यह नमाज जुमा की जमात घर में ही अदा कर सकता है? देखें, इसके लिए शरायत होती है, वो शरायत अगर नहीं पाई जाएगी या ये बंदा उन शरायत का अहल नहीं होगा तो ऐसी सूरत में इसे इजाजत भी नहीं होगी। और उन शरायत के साथ साथ एक इज़्ने आम की शर्त भी होती है, और घर में ये इज़्ने आम की शर्त आम तौर पर नहीं पाई जा सकती या पाई जाना मुश्किल है। तो लिहाजा ये घर में ज़ोहर की नमाज अदा करें। अगर ज़ोहर की नमाज पढ़नी है तो क्या जमात करवा सकते हैं? तो याद रखें, जमात करवाने की इजाजत नहीं है जब नमाज जुमा फर्ज है और ये बंदा शहर में रहता है। तो इस बंदे के ऊपर अगरचे बीमारी की वजह से फर्जियत जुमा साकित है, जोहर की नमाज इसके ऊपर लाजिम है, लेकिन उसकी जमात करना इसके लिए जायज नहीं है। और आखिरी बात इसी सवाल के मुतालिका, वो ये है कि अगर फर्जियत जुमा साकित हो जाने की बिना पर यह घर में जोहर पढ़ सकता है और जोहर की नमाज की जमात भी कायम नहीं कर सकता, तो क्या मस्जिद में नमाज जुमा की जमात से पहले ही ये अपनी नमाज जोहर घर में अदा कर सकता है या नहीं? देखिए, बेहतर यह है कि इस सूरत के अंदर मस्जिद में नमाज जुमा की जो जमात है उसके खत्म होने का इंतजार किया जाए। जब खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद अपनी जोहर की नमाज पढ़े। लेकिन अगर किसी शख्स ने पहले ही अदा कर ली और इसके ऊपर फर्जियत जुमा साकित है अपनी इस बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से, तो इसकी जोहर की नमाज हो जाएगी। मदनी चैनल के नासरीन, आइए आज के सिलसिले में चंद एक रिकॉर्डेड सवालात भी हम शामिल करते हैं। जी सवाल चलाइए।
मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल ये अर्ज है, घर में जोजा को शोर की इक्तदा में नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? जवाब इनायत फरमा दीजिए। जज़ाकअल्लाहु खैरा।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात जहन में रखिए कि मर्दों के ऊपर मस्जिद की जमात वाजिब है। अगर शरायत ना पाई जाए तो वो एक अलग चीज़ है, या किसी वजह से मस्जिद की जमात रह चुकी है किसी शरी उजर की बिना पर या वैसे गफलत की बिना पर, अब जमात नहीं मिलेगी तो घर में नमाज ये पढ़ते हैं। और ऐसी सूरत में घर में नमाज पढ़ते हुए अगर जोजा इक्तिदा करे तो उसका इक्तिदा करना जायज़ है। और जब जोजा यानी बीवी शोहर की इक्तिदा करे तो उस इक्तिदा में यानी उसके पीछे नमाज पढ़ने में इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि वो खातून अपने शोहर के पीछे खड़ी हो, बराबर खड़े होने की शक्ल में। अगर नमाज को तोड़ने वाली, नमाज को फासिद करने वाली सूरतों में से कोई सूरत पाई गई तो नमाज टूट जाएगी। तो नमाज को टूटने से बचाने के लिए इसे अपने शौहर यानी मर्द के इतना पीछे खड़ा होना पड़ेगा राइट साइड पे कि ये उसके बराबर ना आए, कोई भी उस शौहर के बराबर ना हो, तो इस तरह इक्तिदा दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन ये बात भी जहन में रखिए कि जानबूझकर शौहर यानी मर्द का जमात को तर्क कर देना, जो मस्जिद में होने वाली जमात है, जो जमात मुस्तहब्बा कहलाती है, जानबूझकर तर्क कर देना ये गुनाह है। तो जानबूझकर ऐसा ना किया जाए, किसी शरी उजर या किसी वजह से अगर जमात रह गई है तो फिर घर में जमात करके नमाज पढ़ सकते हैं। जी मजीद सवाल चलाइए।
मेरा नाम मोहम्मद अली रजा अत्तारी है। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स नमाज जुमा में शरीक हुआ लेकिन खुतबे में शरीक ना हो सका तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? बराए करम जवाब इनायत फरमा दीजिए।
जो अफराद नमाज जुमातुल मुबारक का खुतबा सुनने के लिए मस्जिद में हाजिर हो गए, उन तमाम के तमाम हाजिरीन पर जुमातुल मुबारक का खुतबा सुनना ये फ़र्ज है। अगर हाजिरीन में से कोई शख्स खुतबा नहीं सुनता, गुफ्तगू में मसरूफ रहता है और दिगर और कामों में मसरूफ रहता है, तो ऐसे शख्स के मुतालिक तो हदीस मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसका जुमा ही नहीं है। शारीन हदीस ने इस हदीस मुबारक के तहत ये लिखा कि इससे मुराद ये है कि वो बंदा फजीलत जुमा से महरूम रहेगा, और इसका ये जो फेल है ये नाजायज़ है, गुनाह का फेल करार पाएगा। अलबत्ता नमाज जुमा इसकी भी अदा हो जाएगी। और जो अफराद जुम्मतुल मुबारक के खुतबा के वक्त मस्जिद में हाजिर नहीं हुए, डायरेक्ट जमात जब कायम हुई उस वक्त आ गए, तो ऐसे अफराद की नमाज भी अदा हो जाएगी। लेकिन पहले अगर पहुंचते تو ثواب ان کو زیادہ ملتا، یہ ثواب سے محروم ہو گئے ان لوگوں کی بنسبت کہ جو پہلے آئے تھے اور انہوں نے خطبہ بھی سنا، ان کو ثواب زیادہ ملے گا، ان کو ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ لیکن جمعہ قائم کرنے کے لیے خطیب کا کم از کم اپنے علاوہ 3 عاقل بالغ مرد افراد کے ساتھ خطبہ پڑھنا شرط ہے کہ اس خطیب کے علاوہ 3 عاقل بالغ مرد موجود ہوں تو خطبہ کی جو شرط ہے وہ ادا ہو جاتی ہے۔ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہر نمازی کا جمعہ کا خطبہ سننا یہ شرط ہے، لہذا خطبہ کے بعد جو لوگ آئے نماز ان کی بھی ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی آئے گی۔ ہونا یہی چاہیے کہ وقت پر آئیں، جیسے ہی اذان اول ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے صحیح کی جائے، یہ واجب ہے۔ ایک مسلمان پر جس کے اوپر جمعہ فرض ہے اس کے لیے واجب ہے فوراً گھر سے نکلے یا سعی الی الجمعہ کرے اور نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو جائے، خطبہ آرام سے سنے آ کر اور سنتیں بھی یہاں آ کر پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی اذان ثانی کے بعد خطبہ ہوتا ہے تو خطبہ سنے، خطبہ سننے کے بعد نماز فرض ادا کی جاتی ہے، اقامت ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ شریک ہو تاکہ اس کو پورا ثواب ملے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے علم پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔